Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Namo Brahmadibhyo ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति शांति शांतिः या सृष्टि सृष्टिराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे काले विधत श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम् या माहु सर्व बीज प्रकृतिरिति ययः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॐ शांति शांति शांतिः।
आइए भगवान शिव की महिमा, बड़े प्यारे देवता हैं वो, कितने प्यारे हैं महाराज, बहुत भोले हैं। हमारे यहां पंचदेव उपासना है ना, पंचदेव उपासना। अब आजकल जमाना है वोटिंग का, तो बहुमत चाहिए, चाहिए ना बहुमत। अगर शिवजी खड़े हो जाएंगे भाई सबसे बड़ा मैं, विष्णु जी खड़े हो जाएंगे सबसे बड़े मैं, और ब्रह्मा जी खड़े हो जाएं सबसे बड़ा मैं, तो कौन जीतेगा? तो जिसके पास वोटिंग ज्यादा होगी वही जीतेगा ना। वोटिंग किसके पास ज्यादा है? हैं? शिव जी के पास, क्योंकि तीन वोट है उनके पास, अकेले के पास। पंचदेव उपासना में पांच देव में तीन वोट उनके पास है या नहीं है? है ना, तो शिव जी हैं, गणेश जी हैं और दुर्गा है, तीन वोट है उनके पास। देखो वोटिंग का जमाना है, वैसे तो वह है ही सबसे बड़े सबसे महान। वो तो एक बात बताइए, फिर कहते हो कहां रहते हैं? शमशान में। क्या कहां रहते हैं? हाँ देखो शमशान में रहते हैं। और विष्णु कहां रहते हैं? क्षीर सागर में। अच्छा अब एक बात बताओ, पूर्व में किसका राज्य है? सारे के सारे जो पूर्व में किसकी उपासना करते हैं? देवी की, अरे दुर्गा की है। नाम नहीं कहते काली कलकत्ते वाली तेरा वचन जाए ना, आलिया, मतलब पूर्व में पूरा का पूरा देवी की उपासना करते हैं। पूर्व के बाद दक्षिण है, दक्षिण में कार्तिकेय स्वामी। किसका? कार्तिकेय स्वामी का, मुर्गा मुर्काय मुर्काय कार्तिकेय। फिर पश्चिम है, पश्चिम में अरे बड़ गणपति बप्पा, है ना, और उत्तर में खुद बैठे हुए हैं, चारों दिशाओं में उनका शासन है, फिर भी रहते कहां हैं? देखो चारों दिशाओं में है ना उनका शासन, चारों दिशाओं में सबको सेट कर रखा, पूरे परिवार को एक एक दिशा में, फिर भी वो कहां रहते हैं? शमशान में। देखो बात तो नहीं है, जो सर्वव्यापक है उसे आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी जान सकते हो। इसलिए बहुत सुंदर कहा, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोदित मेषं गिरीशं। वह मन और वाणी के परे हैं, गिरा माने वाणी, ज्ञान माने बुद्धि और गो माने इंद्रियां। गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम, जो मन और वाणी से परे है। उपनिषद की कथा आप जानते हैं, बहुत बार सुनी हो कथा, देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं की विजय हुई, असुरों का पराजय हुआ, तो सभी आकाश के अंदर जाकर के एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करने लगे कि, और सब कहने लगे भाई मेरी वजह से विजय हुई है, मेरी वजह से विजय हुई है, मेरी वजह से विजय हुई है। उनमें विवाद चल ही रहा था, इतने ही देर में एक यक्ष उनको दिखाई दिया। यक्ष माने पूजनीय, यक्ष माने पूजनीय, और यक्ष भगवान शिव का एक नाम है, हजार नामों में से एक नाम भगवान शिव का यक्ष भी है, यक्ष कहते पूजनीय व्यक्ति को। उनको एक यक्ष दिखाई दिया तो इंद्र ने कहा कि अग्नि तुम जाओ पता लगाओ ये यक्ष कौन है, ये हम तो बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर रहे थे, कहां से आ गए, ये तो हमारा गोपनीय विभाग है, वो लीक हो गया क्या? हाँ, जैसे भारत का हो जाता है ना गोपनीय विभाग। अग्नि गए वहां पर, आपको कथा मालूम है पूरी, अग्नि ने जाकर के पूछा कि तुम कौन हो, उस यक्ष ने कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं जानते? हाँ मैं तो तुम्हें नहीं जानता। अरे मैं अग्नि हूं, अग्नि, मेरा एक नाम मातृश्व जातवेदस है। क्या नाम है? जातवेदस है। उन्होंने कहा ठीक है तुम अग्नि होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है? उसने कहा मैं चाहूं तो सारे संसार को क्षण भर में जला करके भस्म कर दूं। अच्छा इतनी शक्ति? हां। तो शिव जी ने, यक्ष ने उनके सामने तिनका रख दिया और कहने लगे इसे जलाओ। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अग्नि उस तिनके को नहीं जला सका। लौट आया इंद्र के पास और इंद्र को कहा कि हमें नहीं मालूम ये कौन है। वायु के भेजा, वायु तुम पता लगाओ कौन है ये। वायु गया, वही संवाद वायु के साथ हुआ, वायु के सामने भी तिनका रख दिया, लेकिन वायु तिनके को उठाने में समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि वायु ने कहा था कि मैं चाहूं तो इस ब्रह्मांड को एक पल में इधर से उठा करके उधर फेंक सकता हूं। उसके सामने तिनका रखा लेकिन वह तिनका उठाने में समर्थ नहीं हुआ, वह भी लौट आया और क्रमशः सारे देवता गए, किसी ने पता नहीं लगा पाया कि ये यक्ष कौन है। अंत में इंद्र ने विचार किया चलो मैं स्वयं चलता हूं। इंद्र गए वहां पर तो तस्मै स तिरोदधे, जैसे इंद्र वहां पर गए तो वो तिरोधान हो गए। अब इंद्र ने सोचा कि कैसे पता चले कि ये कौन है, तो महाराज इंद्र पता लगाने के लिए वहीं रह गए। मानो इंद्र ने तप किया तो फिर क्या हुआ, तस्मिन हवा आकाशे बहु शोभायमाना स्त्री माजगाम हेमवती उमा है, उसी आकाश में बहुत सुंदर शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए और हिमवान के समान स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम था उमा। इंद्र ने कहा कि उमा प्रणाम क्या देवी, यहां एक यक्ष था, क्या तुमने उसको देखा है? उन्होंने कहा हां। कौन है वह? उमा ने कहा ये वही यक्ष हैं जिनकी शक्ति को प्राप्त करके तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की है। लेकिन ये कैसे हैं, कैसे हैं ये? विचार करता है ऋषि, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेषितं वाचमिमं वदन्ति कौ चक्षुः श्रोत्रस्य युनक्ति। किसकी प्रेरणा से ये हमारे नेत्र देखते हैं? प्रेरणा माने शक्ति। किसकी शक्ति को प्राप्त करके हमारे नेत्र देखने का व्यापार करते हैं? किसकी प्रेरणा से ये हमारे कारण जो है कान है वो सुनने का काम करते हैं? ये जो जिह्वा बोल रही है किसकी शक्ति को लेकर के बोल रही है? ये जो हमारा मन संकल्प और विकल्प कर रहा है कौन है? तो वही जो उमा ने कहा, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये ब्रह्म है शिव, यही शिव है। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं होता यही शिव है। ये नाहुर मनोमतम अपितु, जिसकी शक्ति को लेकर के जिसकी विद्यमानता में ये मन मनन करने का व्यापार करता है, काम करता है। तो जहां मन की गति है नहीं, न तत्र चक्षुर गच्छति न वा गच्छति न मनः, वहां नेत्र की गति नहीं है। ये न चक्षुषा न पश्यति, ये न चक्षुंष पश्यति, यत चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंष पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अरे नेत्र जिसको नहीं देख सकते, अपितु जिसकी शक्ति को लेकर के ये नेत्र देखने का काम करते हैं, वही हे इंद्र ब्रह्म है, वही शिव है। न इदम यदि इदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करो वह शिव नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है, वह कुछ और होगा। यह शिव की अतीतता, सर्वातीतता। जो श्रोत्र से सुना नहीं जाता, श्रोत्र जिसकी शक्ति को लेकर के श्रवण करता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि वही ब्रह्म है। इसे ही कहा गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम। ये उपनिषद ये कह रही कि वह जो गिरीश है, वह जो शिव है, वह तो मन बुद्धि और इंद्रियों से परे है। इंद्र ने उसको जाना सबसे पहले, इसलिए इंद्र सबसे बड़े हो गए। देखो इंद्र में जो पुराणों के इंद्र हैं वो अलग हैं, और जो वेद के इंद्र हैं वो दोनों के करैक्टर में दिन रात का अंतर है। पुराणों के अंदर तो महाराज किसी का घोड़ा चुराता है, कभी स्वर्ग से भाग करके जाता है ना, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। लेकिन वेद में इंद्र किसे कहते हैं? इंदी ऐश्वर्य धातु से इंद्र बना है। और यहां इस उपनिषद में जीव को इंद्र कहा है, भगवान शंकराचार्य का भाष्य, जीव को इंद्र कहा है, बुद्धि को उमा कहा है, यक्ष को ब्रह्म कहा है। तो विद्या उमा है, ब्रह्म विद्या ही उमा है। और ये इंद्रियों के द्वारा यदि हम ब्रह्म को जानना चाहेंगे तो इंद्रियों से ब्रह्म जानने में आने वाला, तो उसके लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। इसलिए जीव रूपी इंद्र ब्रह्म विद्या के द्वारा उस परमात्मा को, उस शंकर को, उस शिव को जानता है। अगर ब्रह्म विद्या नहीं है तो फिर सारे के सारे देवता परास्त हो जाते हैं, लेकिन उस तत्व का पता चलता नहीं। इसलिए शिव के विषय में कहा जाता है कि गिरा ज्ञान गोतेतम ईशम गिरीशम, मनवाणी से परे है। करालम महाकाल कालम कृपालम, वैसे कृपालु शब्द है लेकिन तुलसीदास जी की हिंदी में रामचरित मानस है इसलिए कृपालम लिख दिया है ना, कृपालु शब्द है कृपालुम। अब लेकिन उन्होंने लिखा कृपालम तो हम कृपालम ही पढ़ते हैं ना। कारालम महाकाल कालम कृपालम गुणागर संसार पारम न तो हम। और कैसे वो शिवजी कराल हैं, कराल कराल माने बड़े उग्र हैं, बड़े उग्र हैं कराल। और कराल के आगे वी लगा दो तो हो जाता विकराल, क्या हो जाता है। अच्छा नदी विकराल रूप कब धारण करती है, बाढ़ आ जाती है एकदम, है ना। अग्नि विकराल रूप कब धारण करती है ना, भाई वी उपसर्ग लगा दो तो हो गया विकराल, और वी को हटा दिया तो कराल, छंद की दृष्टि से वो कराल लिख दिया। तो कराल माने बड़े उग्र हैं, कितने उग्र हैं महाराज, उनका तांडव स्तोत्र है ना, एक तांडव स्तुति और है उनकी। तांडव स्तोत्र तो रावण का है लेकिन तांडव स्तुति और है। तो तांडव स्तुति में कहा है, तांडव स्तुति में कि जब वो तांडव करते हैं तो हमारा तांडव ऐसे किया तो सूर्य नक्षत्र चंद्र तारे जैसे उनका हाथ ऐसे गया, ऐसे गया सारे के सारे ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। ब्रह्मा जी भय मानने लग गए, पृथ्वी डगमगाने लग गई, विष्णु का क्षीर सागर महाराज बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगे लेने लग गया, क्योंकि शिव का तांडव है। वो शिव का तांडव माने विराट पुरुष का तांडव है। और विराट पुरुष का तांडव देखो संगीत में, मैं तो संगीत जानता नहीं, मेरे को मत कीर्तन भी नहीं करवा सकता, मेरे को इतना भी नहीं आता। वो तो परमात्मा की देन है, किसी को कोई देता है, परमात्मा किसी को कुछ देता है, सबको सब चीज देता नहीं, देनी भी नहीं चाहिए, है ना, ठीक है ना, क्योंकि सबको सब चीज दे देगा तो आदमी ज्यादा अहंकार आ जाएगा। लेकिन संगीत में नृत्य दो प्रकार का होता है, लास्य नृत्य और तांडव नृत्य। लास्य नृत्य उसे कहते हैं, लास्य नृत्य उसे कहते हैं जिसमें आह्लादकता होती है, और तांडव नृत्य उसे कहते हैं जिसमें संहार होता है। जैसे शिवजी जब तांडव नृत्य करते हैं कब, जब वो संहार करते हैं, लेकिन संहार के अतिरिक्त वो लास्य नृत्य करते हैं। नृत्य किसने सिखाया, संसार में नृत्य विद्या गान विद्या कहां से आई, उन्हीं से ही आई है, उन्हीं से ही आई है। महाभारत में श्री कृष्ण ने तांडव किया तो गोपियों के साथ उन्होंने लास्य किया। श्री कृष्ण ने काले नाग के ऊपर कौन सा नृत्य किया, तांडव किया, उनका दमन किया। तो ये जो विराट पुरुष जब नृत्य करते हैं, विराट पुरुष जब विराट पुरुष नृत्य करता है तो सृष्टि के संहार के समय नृत्य होता है, और जब सृष्टि का संहार होता है तो कुछ शेष रहता नहीं है, इसलिए वो क्या है, कराल। क्या है,
शिव जी का स्वरूप है महाराज, कराल है वो।
वैसे तो उनसे ज्यादा क्या तो भोला भी कोई नहीं है ना, भोला पता नहीं क्यों नाम रख दिया उनका, लेकिन है तो भोले है ना। करालम महाकाल कालम कृपालम, और महाकाल है। काल किसके वश में है, आयुर्नश्यति पश्यतम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। देखो आयु नष्ट हो रही है, युवावस्था जर्जर हो रही है, धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, लेकिन कालो जगत भक्षक, ये काल सारे संसार को खा रहा है। लेकिन इस काल को खाने वाले कौन है? महाकाल। महाकाल है महाराज, सब काल के वशीभूत हो जाएंगे, ब्रह्मा भी विष्णु भी रुद्र भी, लेकिन जो शिव है, परम शिव है, वो कालातीत है। वह कालातीत भी है और कलातीत भी है, है ना? कालातीत भी है और कलातीत भी है। अच्छा, आपने मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनी है, मृकंडो के पुत्र थे मार्कंडेय, मृकंडो ऋषि के। तो मृकंडो ऋषि ने तप किया, तप किया तो देवता प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो, उन्होंने कहा मुझे एक पुत्र चाहिए। अच्छा देखो, अब समझ में नहीं आता, आज तो पुत्र के लिए कोई तप तो करता नहीं, विवाह के लिए भी तप नहीं करता। हम आपको हंसी आ रही, पर मैं जो कह रहा हूं, प्राचीन ऋषियों ने विवाह के लिए भी तप किया और पुत्र के लिए भी तप किया, लेकिन यही अंतर है, यही अंतर है, उनको पुत्र कैसा चाहिए था वो सोच करके तप करते थे। अगर आपको चाहिए कि मेरा पुत्र ब्रह्मज्ञानी हो तो उसके लिए तप करना पड़ेगा, आपको चाहिए कि मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हो तो उसके लिए भी तप करना पड़ेगा। मतलब आपको पुत्र चाहिए कैसा, इस पर निर्भर करता है, पत्नी चाहिए कैसी, इस पर निर्भर है। अगर आप सोचे कि पत्नी, पत्नी और पति दोनों एक ही वर्ब रूट है संस्कृत में, पारक्षण है, उसी से ही पति बनता है, उसी से ही पति माने रक्षा करना और पत्नी माने भी रक्षा करना, और पत्नी घर में रहते हुए धर्म की रक्षा करती है, पति की रक्षा करती है, तो पति भी पत्नी की रक्षा करते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर के अपने जीवन की रक्षा करते हैं, और जीवन की रक्षा होती है परमार्थ में। इसलिए पत्युः यज्ञ संयोग वर्ब है, वो सूत्र है पाणिनि का। पत्नी किसे कहते हैं? जो यज्ञ के साथ जिसका संयोग हुआ है। ऐसे नहीं कि कोर्ट में जाकर के वो, हाँ कोर्ट में गए और मैरिज कर ली, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा होगा तो फिर ऐसा ही होगा, जैसा चल रहा है, दुख क्लेश कष्ट वेदना पीड़ा। तो परमार्थ में अगर जीवन जा रहा है मिल करके, परमार्थ में जीवन जा रहा है, तो वह सदगृहस्थ कहलाता है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियो भार्या प्रिया लापिनी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषिरतिष्ठाज्ञा परा सेवकः आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानागृहे साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमम। ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है जहां अतिथि सेवा भी हो, भगवान की भी आराधना हो और संगति अच्छी हो, साधु की संगति हो, वो सबसे अच्छा माना जाता है। खैर चलो, हम तो महाकाल की बात कर रहे थे। तो मृकंडो ऋषि ने तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए, देवता प्रसन्न हो गए और कहने लगे पुत्र तो मिलेगा, लेकिन आप एक पुत्र चाहेंगे जो अल्प आयु हो लेकिन सर्वगुण संपन्न होगा, वह बुद्धि विद्या बल शक्ति जीवन सब कुछ उसमें होगा, सब गुण होंगे उसमें, या 100 पुत्र चाहिए जो मूर्ख हों। तो ऋषि ने कहा मुझे एक ही पुत्र दे दो, अल्पायु का ही दे दो, लेकिन दे दो पुत्र। पुन्नाम नरकम तस्मात्रायते इति पुत्रः। मुझे एक ही पुत्र दे दो, अल्पायु का ही दे दो, लेकिन दे दो सर्वगुण संपन्न। पुत्र हो गया। अब महाराज जब पुत्र हुआ तो उनकी आयु 16 वर्ष की थी। जब मृत्यु नजदीक देखी तो पिताजी रोने लगे, कहा क्यों रोते हो? मैं शिवजी की आराधना करूंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता।
महाराज और मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय शिव जी की आराधना करने के लिए लग गए। अब यमराज आए, कहने लगा चलो, नहीं जाएंगे तो शिव जी को छोड़ ही नहीं रहे, मंदिर में बैठे हैं। अब महाराज उन्होंने कहा मैं देखता हूं शिव कौन होता, उन्होंने अपना पासा फेंका और शिवलिंग पर भी डाल दिया। वहीं से शिव जी भगवान प्रकट हो गए और अपने त्रिशूल से यमराज को खत्म कर दिया। तब से उनका नाम हो गया महाकालेश्वर। अंत का अंतक, अंतक कहते मृत्यु को, और मृत्यु का भी अंत करने वाले अंत का अंतक हो गए। मृत्यु का भी जो अंत करने वाले हो, तो महाराज ये महाकाल हैं और काल हैं, यही सृष्टि को असंहार करते हैं, इसलिए महाकाल भी यही है और काल भी यही है। महाकाल कालम, काल माने जगत भक्षक, समय आने पर सारे सृष्टि को संहार करके जो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं उनको काल कहते हैं। कुछ बातें सुनने में बड़ी विचित्र लगती है कि ऐसी भगवान को क्या आवश्यकता है कि सबको ही समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये तो उनके नियम है, उनकी व्यवस्था है, उनका नियम है, उनकी व्यवस्था है। महाराज अगर सबको नहीं मारते तो जब से प्रेमपुरी आश्रम बना है तब से, और जब तक रहेगा 100 साल, 200 साल, 500 साल, जब तक भी रहे, कितने आदमी इसमें बैठने के लिए आते हैं। आप अपना घर समझ लो, आपका फ्लैट है, उसमें आपके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, और सबके संतान। अब तो हम दो हमारे, पहले तो हम दो हमारे 10 होते थे, है ना, बहुत संतान होती थी ना। तो सोचो एक फ्लैट में कितने लोग आते हैं।